તારીખ 25/12/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 751 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 54 મૂળ કેસેટમાં અવાજ ધીમો છે તથા ડિસ્ટર્બન્સ છે.
वितराग की साक्षी देते हैं, सर्वज्ञ की साक्षी देते हैं, वो सर्वज्ञ स्वभाव में से निकली हुई चीज होती है. इसलिए वहां सर्वज्ञ की जो साक्षी है वो भी यथार्थ है.
वरना ये समस्या है, जैसे कल बात चली थी कि हम क्या करें, सुबह शुभ भाव से तो कोई शुद्ध भाव होता नहीं, दर्शन ज्ञान चारित्र तो शुद्ध भाव रूप परिणमन है. हमारे पास तो कारण शुद्ध भाव रूप कारण तो है नहीं, अब क्या करें. शुद्ध भाव से तो शुद्धता होगी नहीं हमारे पास, तो हमारे पास तो अभी शुद्ध भाव आया नहीं, पैदा हुआ नहीं, अब क्या करें. तो उसका निवेड़ा कर दिया है, उसका रास्ता खोल दिया है. ये जो शुभाशुभ परिणाम है वो तो चारित्रमों के हैं, और सम्यक चारित्र तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक होता है. तो पहले वो चारित्र गुण है इसकी क्यों चिंता करते हैं, पहले सम्यक ज्ञान और सम्यक तो कैसे हो उसकी चिंता करो, क्या उसका रास्ता खोजो. दर्शन में जिस परिणाम से मंद होता है, जिस परिणाम से दर्शन में की ताकत टूटती है, कमजोर हो जाता है, और जो आगे जाकर के उक्षम को प्राप्त हो ही जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कदाचित हो जाएगा कदाचित नहीं हो जाएगा, वो बात नहीं, हो ही जाएगा। ऐसे परिणाम को यहाँ संकेत कहने में आया। नहीं, ये परिणाम को शुभाशुभ की संज्ञा इसलिए नहीं लगती कि शुभाशुभ की संज्ञा चारित्रमों के परिणाम को लगती है। यहाँ चर्चा चल रही है दर्शन मोह के परिणाम की। क्या ज्ञान को शुभाशुभ परिणाम की संज्ञा लगती है तो फिर श्रद्धा क्यों क्यों लगे? श्रद्धा श्रद्धा की चल रही है, पर हम सम्यक दर्शन के लालायत है अगर तो हमारा ध्यान तो श्रद्धा के परिणाम पर जाना चाहिए, किंतु बाह्य दृष्टि होने से और ज्ञान में स्थूलता होने से हम सिर्फ स्थूल परिणाम को ही देखते रहते हैं कि अशुभ मिटा, शुभ हुआ, अच्छा हुआ, अशुभ मिट गया, अशुभ तो करते हैं ना, ठीक है, तो इतना तो अच्छा किया। पहले मंदिर नहीं जाते थे, अभी मंदिर जाने लगे। पहले शास्त्र का स्वाध्याय नहीं करते थे, अभी शास्त्र का स्वाध्याय भी करते हैं। पहले शास्त्र नहीं समझते थे, अभी थोड़ा समझने लगने से थोड़ी शांति भी रहती है, आनंद भी आता है। ऐसे ऐसी मोटी मोटी स्थूल बातें पकड़ करके वहाँ राजी हो जाते हैं और खुशी हो जाते हैं। ऐसा लगता है ये करने लायक नहीं है। हमारा ध्यान तो दर्शन होकर जाना चाहिए। किसका निर्णय नहीं होता है? पहले तो बात यह है कि हमारा दर्शन मोह का अनुभाग छूटे, ऐसी प्रवृत्ति किस प्रकार से की जाए, ऐसे परिणाम कैसे होना चाहिए, क्या इसका निर्णय हमने किया? इसका निर्णय हमने किया क्या? मेरा प्रश्न है, जब हमको परमार्थ सम्यक दर्शन चाहिए, जो सम्यक दर्शन मोक्ष का मूल है, तो मोक्ष का मूल कौन है? सम्यक दर्शन। तो मोक्ष तक पहुंचने के लिए हमें मूल चाहिए। ये मूल का बीज कौन है? क्योंकि मूल तो बीज में से पैदा होता है, ये मूल का बीज कौन है और बीज का बीज कौन है, ये चर्चा चल रही है। जैसे एक आम का पेड़ है, इसके मूल होते हैं और वो मूल गोटले में से बाहर आया है और गोटला में जो गोटली है उसमें से वो अंकुर निकला है। तो कृपाल उदय यहाँ तक गए हैं, कहा आम चाहिए हमको, कैरी चाहिए, लेकिन इसका मूल कहाँ है, मूल का बीज क्या है, बीज का बीज कहाँ है, वहाँ तक संशोधन किया है। ध्यान हमारा यहाँ जाना चाहिए। सौभाग्य भाई शास्त्र नहीं पढ़े थे कहा, लेकिन इनका ध्यान गया, आत्मशुद्धि पढ़ के हमारा ध्यान गया कि नहीं गया वो विचार कर लेना आपने। लेकिन सौभाग्य भाई का ध्यान गया था आत्मशुद्धि पढ़ करके। अरे आपने तो संकेत के विषय में अनेक प्रकार की बातें कही हैं, तो उसका उसमें विशेषता क्या रखी है आपने, ऐसा पूछा है। तो कृपाल देव ने उत्तर दिया कि हमने तो वहाँ तीन प्रकार के संकेत का उपदेश किया। जो पहला संकेत है को 17 गाथा में बताया, प्रचंड मत आग्रह तभी वर्ते सदगुरु लक्ष्य संकित तेने भाखियो कारण गणे प्रत्यक्ष। वो संकित का प्रत्यक्ष कारण, तो वो बात 17 गाथा में किया। यहाँ उसकी परिभाषा करते हैं। यथार्थ मुमुक्षुता की भूमिका के पूर्व तत्काल व बाद में आत्मज्ञान का फंक्शन इस रूप में होता है, या यूं कहे कि आत्मज्ञान किस रूप में मौजूद रहता है, भूमिका में। यथार्थ मुमुक्षुता की भूमिका के पूर्व भूमिका
भूमिका के पूर्व और तत्काल मैंने चालू कंटिन्यू वर्तमान और बाद में मैंने वो भी समय के पहले का मैंने सभी बात समय के पहले के लिए देना है। इसमें आत्मज्ञान का फंक्शन किस रूप में होता है, पहले तो सिद्धांतिक तौर से हम इसको आत्मज्ञान समझते नहीं हैं, लेकिन जो आत्मज्ञान का कारण रूप ज्ञान के परिणाम है उसको आत्मज्ञान कहने में कोई आपत्ति नहीं है। जैसे यहाँ सम्यक्त्व के पहले के परिणाम को संकेत कहने में कोई आपत्ति नहीं है, वैसे जिसे थोड़ा नया लगेगा आपको अभी टाइम एकदम नया लगेगा, लेकिन मनुष्य मनुष्य की भूमिका जो है ये बहुत समझने योग्य भूमिका है, समझने के लिए चर्चा करने योग्य भूमिका है। क्यों? क्योंकि सिद्ध पद का जो फाउंडेशन स्टोन है वो मुमुक्षु की भूमिका है। सम्यक दर्शन कहां से पैदा हुआ, ज्ञान दशा कहां से पैदा हुई, कि यथार्थ मुमुक्षुता से, जिसकी मुमुक्षुता यथार्थ उसको सम्यक दर्शन ज्ञान होगा, उसको निर्वाण पद यानी सिद्ध पद होगा। तो सिद्ध पद के नींव में क्या चीज पड़ी है, लोग मकान को दिखते कहो 25 माल का 50 मंजिले का मकान है, लेकिन उसकी नींव को नहीं देखते कि वहां कितनी कॉन्क्रीट मजबूती है जिस पर ये खड़ा है। इतना बड़ा मकान किसके पर खड़ा है, ये सिद्ध पद किसके पर खड़ा है, कहेंगे हम तो सिद्धांतिक तौर से कहेंगे सम्यक दर्शन पर खड़ा है, लेकिन सम्यक दर्शन किसके पर खड़ा है ये चर्चा की है। भूमिका जिसमें हम गुजर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए वो हमारे लिए बहुत क्योंकि हम वहां हैं। अगर ये भूमिका बराबर हुई सम्यक दर्शन लाना नहीं पड़ेगा, सम्यक दर्शन को आना पड़ेगा। सम्यक दर्शन लाना नहीं पड़ेगा, सम्यक दर्शन को आना पड़ेगा। जैसे धवल का आधार लेकर के गुरुदेव फरमाते थे, धवल का आधार लेकर गुरुदेव फरमाते थे कि मति श्रुत ज्ञान को केवल ज्ञान को बुलाता है, तो केवल ज्ञान लाना नहीं पड़ेगा, जिसको यथार्थ मति श्रुत ज्ञान हुआ केवल ज्ञान काम करता है। ऐसी योग्यता होती है, अनन्य कारण में ऐसी योग्यता होती है। तो ये लिंक बिठाई है सम्यक दर्शन की लिंग बिठाई है। ऐसे ही ज्ञान सम्यक दर्शन के काल में सम्यक ज्ञान होता है तो ज्ञान की भी लिंक है, पर ज्ञान तो प्रधान है। ज्ञान इसलिए प्रधान है कि हम ज्ञान से ही सब प्रवृत्ति करते हैं, जो भी प्रवृत्ति करते हैं वो ज्ञान के लिए करते हैं, चाहे ठीक करते हैं या अठीक करते हैं, लेकिन हमारी जो समझ है उसी के अनुसार करते हैं। इस प्रश्न को आगे लेते हैं कि यथार्थ मुमुक्षुता की भूमिका से पूर्व, तो प्रश्न में ये है कि यथार्थता आने के पहले की बात लेना है, कैसे आती है। जिसको एकमात्र आत्मकल्याण की ही भावना हो और इस जगत में से इस संसार में से कुछ नहीं चाहिए, नास्तिक कहता है, पर चाहिए तो एक हमारा एक आत्मकल्याण भी चाहिए, ऐसी जिसकी उत्कृष्ट भावना है ये परिणाम है वो यथार्थता को ले आता है। उपाली देखो उसको सुविचारणा होती है, जो प्रगटे सुविचारणा तो प्रगटे निज ज्ञान, जे ज्ञान क्षय मोहित पामे पद निर्वाण। तो निर्वाण पद के नींव में सुविचारणा लिया है। सुविचारणा में क्या होता है कि मुझे जो कुछ भी करना है, अब इसकी फंक्शनिंग की बात करती है ध्यान रखिए, कि उसमें जो कुछ परिणाम होते हैं वो उस प्रकार के होते हैं कि उसमें मेरा आत्मकल्याण होता है कि नहीं होता है, मैं आत्मकल्याण के लिए कर जैसे खाना है कल्याण,
उपवास करना है, कमाने की प्रवृत्ति करनी पड़ती है। होगा तब से काल में उदय होगा, तो जितने भी उदय भाव है उसमें आत्म कल्याण का जो प्रयोजन है वो तो प्रयोजन की तीक्ष्ण दृष्टि जब आती है तब यथार्थता को भी आती है, फिर हर कार्य में हर परिणाम में उसकी यथार्थता इसलिए रहेगी कि उसका जो केंद्र स्थान है वो आत्म कल्याण करना उतना ही। इसका कारण वो है कि हमारे प्रयोजन जो आत्म कल्याण है वो उसमें कोई दम नहीं, सत्संग के अलावा इसका कोई रास्ता। अगर डॉक्टरी करते करते लगा के अभी कोई सत्संग के लिए निवृत्ति लेना में कोई तकलीफ नहीं है तो जल्दी से जल्दी निवृत्ति ले लेनी चाहिए, क्यों कि ये काले हैं वो भी सफेद तो हो ही गए, यानी नोटिस तो आई गई, ये कागजात जो है सफेद में काले हैं जो लिखे हुए वो काले में सफेद लिखा हुआ है, है ये नोटिस कि अभी तुम चेतो, अगर नहीं चेतोगे तो फिर पछताओगे, तो इसलिए सत्संग के अलावा कोई तरने तिरने का रास्ता नहीं है वरना डूब जाएंगे। इस काल के लिए तो क्या, सर्वकाल के लिए सत्संग है वो अमृत है, मरने से एक मरण से नहीं अनंत जन्म मरण से बचाने वाला पदार्थ है, इसलिए सत्संग यथार्थ रूप से सत्संग की उपासना करने लायक है। तो पुकार पुकार करके इस जन्म को पुकार सत्संग का विषय किया, नाश्ती है भाव भ्रमण है उसका नाश करना है तो उसकी चिंतना है, और वही अस्थि से आत्म कल्याण है, तो अपने जो आत्म जागृति में 20 नंबर का जो आर्टिकल चला है आत्म उन्नति का प्रशस्त क्रम, उसमें पहले वो बात किया है कि मनुष्य जीव को यथार्थता का पॉजिटिव साइड से ले तो आत्म कल्याण की भावना है, नेगेटिव साइड से रहें तो भव भ्रमण की चिंतना, वो चिंतना आए बिना ठीक है। हमको एक जो कंप्लेन है डॉक्टर साहब कि ये टिकते नहीं है, हमको अच्छा लगता है ये सब बातें, हमको अच्छी लगती है, सुहाती है, पढ़ते हैं सुनते हैं बार बार, लेकिन हम सीखते क्या कारण कि हमारा प्रवेश है ये भव भ्रमण की चिंतना पूर्वक हुआ है या नहीं हुआ है, ये नहीं किसी का ये कारण। अगर भव भ्रमण की चिंतना से मुमुक्षुता का प्रवेश हो तो ये नहीं टिकने वाली बात नहीं रहेगी, प्रश्न का सीधा उत्तर हो बाहर में सत्संग और अंदर में भव भ्रमण की चिंतना चालू हो जानी चाहिए। कैसी चिंतना, झूरना हो जाए ऐसी चिंतना आ जाए, तो झूरते हैं किसी को मर जाते हैं तो दूर दूर से मरते हैं, ऐसी जीव न आ जाए, इसके लिए दो पत्र को फल एक छियासी पत्रांक है और एक 195 नंबर का पत्रांक है। दोनों पत्र में एक ही विषय लिया है, इस आत्मा को, इस जीव को अनंत काल से परिभ्रमण होता है और इसकी निवृत्ति नहीं होती है, या ये परिभ्रमण का नाश नहीं हो रहा है, तो किस कारण से हो इसकी चिंता किए बिना और इसके लिए दृढ़ होकर के जुड़े बिना मार्ग की दिशा का, मार्ग का नहीं, मार्ग किस तरफ है, किस दिशा में हमारा मार्ग है, उसका एक अंश का या अल्प भी भान जीव को नहीं आता। इस पत्र में लिखा इससे संतान के दूसरे सब विकल्प को छोड़ करके और दूसरे सब साधन को छोड़ करके एक यही पहले करना होगा। यहाँ से शुरुआत होती है सुविचारणा की, सुनिर्वाण पत्ता कारण सुविचारणा संकीर्ति गाथा 17 लिखी, शायद ये 24 नंबर की गाथा होगी, पठन सुविचारण जो प्रगटे सुविचारणा इकतालीस ज्ञान प्रगटे सुविचारणा त्या प्रगटे ज्ञान ये ज्ञाने क्षय होती गाथा 17 लीजिए, श्रद्धा के ज्ञान की गाथा 41 दोनों साक्षात करना। यहाँ से दर्शन हो कि मंदता की शुरुआत होती है, अनुभव सूचने की शुरुआत भी यहाँ से होती है और ज्ञान की यथार्थता की शुरुआत भी यहाँ से होती है। फिर आगे वो क्रम वाला ले लेना, तो पूर्व में ये आता है प्रयोजन की दृष्टि एकदम तीव्र होती है, शिक्षण होती है, यदि इसका आगे जा करके सारे संसार पर या पूरे हमारे उदय पर उदासीनता आ जाती है और उदासीनता यथार्थ रूप से आई तो पूर्णता का लक्ष्य बांधना आसान है, सहज रूप से परिपूर्ण शुद्धि का ध्येय लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा और ऐसा निर्धारित होने से एकदम आत्मकल्याण के लिए वेग संवेग उत्पन्न हो जाएगा। चौथा स्टेज है, पहला स्टेज भवरमण की चिंतना, दूसरा स्टेज इस चिंतना से प्राप्त यथार्थ उदासीनता, तीसरा स्टेज शुद्ध अंतकरण से उत्पन्न होने वाला पूर्ण शुद्धि का ध्येय लक्ष्य और तत्काल ही उत्पन्न होता है आत्मकल्याण की अपूर्व भावना और भावना में उतना वेग रहता है, इतना संवेग रहता है, ये टूटने की कंप्लेन नहीं आएगी, हमारा परिणाम आगे नहीं चलता है, नहीं बढ़ता है, वो बात नहीं आएगी, इतना फोर्स से काम आगे बढ़ेगा और प्रयोजन की दृष्टि इतनी सूक्ष्म और सूक्ष्म होगी कि कहीं भी अप्रयोजनभूत विषय में हम माथा नहीं लगाएंगे, अप्रयोजनभूत विषय में हम प्रश्न नहीं करेंगे, अरे हमने हमारे सामने आएंगे तो हम उसको गौण करके लगा देंगे, हमारे काम वर्तमान हमारा प्रयोजन क्या है, परंपरा प्रयोजन तो अंतिम प्रयोजन तो जो पूर्णता का है तो परंपरा बीच वाले आ ही जाएगी, इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं। इस तरह से आत्मज्ञान का कहता है ज्ञान की यथार्थता के लिए, या दूसरे प्रकार से कहा जाए तो सम्यक ज्ञान का प्रीस्टेज कौन है, तो यथार्थ समझ वाला मुख्य की भूमिका का यथार्थ ज्ञान यही आत्मज्ञान का प्रीस्टेज है, पूर्व क्षमता, और उसकी शुरुआत ये यहाँ से होती है। जो बात का जो पदार्थ निर्णय है, स्वरूप का निर्णय है, पहचान है, जिसको यहाँ गोपाली जी ने दूसरा संकीत कहा, वहाँ तक ये यथार्थता चालू रहती है। और इस यथार्थता के फंक्शन के दौरान एक बात उत्पन्न होती है कि हम इस रास्ते से अनजाने हैं, क्योंकि हमको इससे जानकार ज्ञाने के रूप मिल जाए तो हमको ये काम हमारा करने में पूरी सुविधा हो जाएगी, वरना हम कहाँ भूलेंगे, हमको पता लगेगा, क्योंकि पढ़ने का हजार ठिकाना है, पढ़ने का एक ही वहाँ से पूर्णता का लक्ष्य होते भी इस पूर्णता तक पहुँचने के लिए काफ़ी जिससे आगे हम हमारे परिणाम की हमारे हृदय की किताब सुन करके पूरी पूरी मार्गदर्शन हम प्राप्त कर सकें, और कहीं भी हम छुके नहीं, क्योंकि छुकने से रास्ता पूरा बदल जाता है, और रास्ता बदल जाने से जितने दूर चले जाते हैं उतना वापस आने का परिश्रम और बढ़ जाता है, और समय और शक्ति का मेन सिम्टम है वो है यथार्थता। यथार्थता ये इसका मेन सिम्टम, एक स्टेज अलग अलग आता है, जैसे उन्नति के परिणाम आगे बढ़ते हैं वैसे स्टेज अलग अलग आता है, लेकिन यथार्थता सबों में कॉमन है, कॉमन फैक्टर यथार्थता है। हाँ वही यही भावना, इसलिए कुछ बैंकों ने इस भावना को बहुत जबरदस्त भगवान समर्थ को सुंदरता है, सुंदरता रखना अंतर में से उसकी भी भावना कितने से अंतर में से मैंने आत्मा में से उसकी भी भावना कहीं देखना कितनी अंतर में से उठी हुई भावना मैंने आत्मा में नास्तिक क्या लिया, राग द्वेष में से उठी हुई नहीं कि आपके पास आपके साथ झगड़ा हो गया इसलिए वही राग आ गया, वो बात नहीं है, या हमारे फलाने फलाने मर गए इसलिए वही राग आ गया, या हम धंधा में नुकसान कर दिया इसलिए वही राग आ गया, वो बात नहीं, अंतर में से उठी हुई वो कभी निष्फल नहीं जाती, कभी निष्फल अगर ये निष्फल जाए तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े, ये बात लिखा है, 14 ब्रह्मांड को शून्य हो जाए तो ये भावना निष्फल होती है, तो इसकी मजबूती कितनी, तो 14 ब्रह्मांड की मजबूती से भी ज्यादा, इसलिए 14 ब्रह्मांड के ऊपर जो शुद्ध पद है वहां वो विराजमान होता है, यही कारण विराजमान दूसरा नंबर का वो भी ऐसा ही है, वो तो लोग पूछते क्या करे सूझता नहीं है, उसका भी उपाय दिखाया है कि अंतर के उन्नान से अपना हित साधने के लिए जो जागृत हुआ और वास्तविक आत्मा की सच्ची लगन लगी आत्म कल्याण की, वो आत्मलग्नी ही उसको मार्ग कर देगी, आत्मा की सच्ची लगनी लगे और अंदर में मार्ग न मिले ऐसा बनता ही नहीं, बनता ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सब बातें उन्होंने अपने मनुष्य की भूमिका के परिणाम में थे। तब जब अनुभव हुआ तो पता चल, आज में देख लेते हैं अपने भूतकाल को, तुम कैसे कैसे परिणाम में चले थे। तो इनके सब बातें मुमुक्षुओं के भलाई के लिए निष्कारण करुणा से लिखी गई, तो लेना देना तो जाने को दोष होता नहीं है। इसलिए आत्मा की लगनी लगनी चाहिए और उसके लिए फिर दिन रात प्रयत्न करना। छुपा करके प्रवचन प्रवाह चलने दो, बाद में शाम को चर्चा चलती है तो बीच में प्रश्न चलेगा तो अभी चालू प्रवाह ठीक जाएगा, हमारा प्रवाह तो नहीं छूटता है। उनको तो बीच में प्रश्न आता है तो हमारा प्रवाह नहीं छूटता है, इसलिए हमारा प्रवाह की चिंता नहीं करना। दूसरा क्या है कि हमको ये पत्र जल्दी जल्दी पढ़ने की जल्दबाजी भी, विषय को पूरा पूरा खोलना चाहिए, चारों ओर तक खोलना चाहिए और पूरा खोल करके आगे जाना है। तो इसलिए और एक औषधि इसका स्पष्टीकरण दे देंगे जो बात सामने आई है कि जब किसी को प्रश्न पूछता है और अंतर में से जिज्ञासा होती है उस वक्त उस जीव में ग्रेस्पिंग पावर जो है वो तेज हो जाता है, उसको ग्रेस्प करने की ग्रहण करने की कैपेसिटी बढ़ी हुई होती है और सत्य को ग्रहण करने का ज्ञान की भूमिका में विचार की भूमिका में अवकाश पैदा होता है, उसी वक्त वो सत्य को ग्रहण कर लेता है। तो प्रश्न उठे उसी वक्त उसको उत्तर मिले वो जरूरी है, भूख लगे तब खाना जरूरी है, भूख मर जाए फिर खाना जरूरी नहीं है। तो बीच में प्रश्न होता है वो तो अपने कहीं मुमुक्षु भाइयों को अखरता है जिसमें वो समझ बराबर नहीं है। बीच में प्रश्न होना ही चाहिए, हम तो ये कहते हैं। 100 प्रश्न होता है तो हम कहते हैं कि आप 125 ले आइए, 100 मत करिए, लेकिन जिज्ञासा होनी ही चाहिए और पूरी पूरी चर्चा होनी चाहिए। हाँ, एक बात अवश्य है, विषय को छोड़ करके, चलते विषय को छोड़ करके या विषयांतर करके कोई प्रश्न पूछता नहीं करता, जो सामने उपाध्याय कर रहे हैं उसी विषय पर कितने भी प्रश्न आ जाए उनको चारों ओर से करना ही चाहिए, करना मानता है पर तो ही ये विषय यथार्थ रूप से ग्रहण किया जाए। यही कारण है बड़े बड़े परमागमों में प्रश्न उठा करके क्यों टिकाएं और शास्त्र रचना होती है। आचार्य महाराज को तो समाधान था, उनको कोई प्रश्न नहीं उठा है, लेकिन शास्त्र में उन्होंने क्यों उठाया? इसलिए उठाया कि ऐसे गंभीर विषय में जिज्ञासा पूर्ण प्रश्न होना चाहिए और इसका उत्तर हम यहाँ देंगे। अगर आपकी ऐसी जिज्ञासा नहीं होगी तो ऊपर ऊपर से शास्त्र की पढ़ाई हो जाएगी और उसका कोई फल आएगा नहीं या वो ग्रहण नहीं हो पाएगा। तो शास्त्रकार खुद ही प्रश्न उठाते हैं, तो इसमें इसका संकेत है कि तुमको प्रश्न उठना चाहिए यहाँ। अगर तुमको प्रश्न नहीं उठता है तो तुमको ग्रहण करने की दरकार भी नहीं। ये बात तो थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, रात्रि चर्चा में आप लिख के दे दीजिए, उसका भी अपन अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। हाँ, वो भी प्रश्न अच्छा है, दर्शन मोह का जब चर्चा चली रही है तो चारित्र मोह और दर्शन मोह में किस प्रकार की आपस में लिंक बैठी हुई है। प्रश्न तो वो है मूल में कि कोई कोई संबंध है ही नहीं क्या, क्या है कुछ, बस तो इतना ही प्रश्न है ना आपका। प्रश्न को और मैं स्पष्ट करता हूँ। हाँ, इसलिए तो सम्यक्वाचरण, हाँ वो चारित्र, वहाँ चारित्रों का भी अनंतानंद मंदिर का नाश होता ही है चारित्र। हाँ, स्वरूपाचरण जब जब सम्यक दर्शन होता है तो सम्यक दर्शन खुद ही सम्यक आचरण रूप है, सम्यक ज्ञान भी एक आचरण रूप है। लेकिन हम प्रश्न उठाते हैं चारित्र मोह का, तो चारित्र मोह में वहाँ अनंतानंद मंदिर का चार चार कथाई पकड़ी जाती है, तो उसके साथ लिंक तो है ही, कोई संबंध नहीं है ऐसा नहीं है, संबंध तो है। अब बात रही मुमुक्षु की भूमिका की, तो मुमुक्षु की भूमिका में चारित्र मोह के परिणाम और दर्शन मोह के परिणाम में किस प्रकार का संबंध रहता है या संबंध नहीं रहता है। ठीक है, प्रश्न तो आपका उतना ही है। तो चारित्र मोह में जो कसाई के परिणाम है उसको हम कसाई कहते हैं, उसमें जितना कसाय रस है उसके साथ दर्शन मोह का संबंध, कसाई के साथ नहीं। फिर से, कसाई एक चीज है, उसमें रहा हुआ रस वो एक दूसरी चीज है, एक दूसरा फैक्टर है इसका कसाई, उस कसाय रस के साथ दर्शन मोह का संबंध है। इसलिए मुमुक्षुओं को एक सूचना दी गई है, कृपा एक पत्र में बात हुई है कि हमारे मुमुक्षु जीव को अपने उदय में तीव्र रस से परिणमन करके प्रवेश नहीं करें, मंद रस से परिणमन करके प्रवेश करें। उदय में तो प्रवेश हो ही जाएगा तुम्हारा, तो उदय को नहीं रोक सकते। ज्ञानी ज्ञानी को भी उदय आता है, वो भी उदय में के परिणाम में चलते हैं आंशिक रूप से, तो मुमुक्षु की तो गुंजाइश ही नहीं है कि उदय के परिणाम रोका जाए। लेकिन उसका रस है वो जितना मंद होता है उतना दर्शन मंद होता है, और रस तीव्र होता है तो दर्शन वो भी तीव्र होता है, तो रस के साथ होता है। हाँ ठीक है, है क्या, हाँ रसगारों में तो हाँ ठीक है, हाँ उसमें भी रसगारों में भी रस ही बढ़ता है, ठीक बात है। रस माने अब देखिए, कब टी वी देखते हो, पिक्चर देखते हो, या फिर जैसे आप जिसमें आपको इंटरेस्ट ज़्यादा हो तो इन्वॉल्वमेंट होता है, या आप ये कहिए कि जिस परिणामों परिणाम अनेक परंपरा रूप एक ही विषय के परिणाम चलते हुए समय कहाँ खत्म हो जाता है इसका ख्याल नहीं रहे, इस प्रकार की एकाग्रता रूप परिणाम जहाँ होता है वहाँ रस के परिणाम समझिए, तीव्र रस के परिणाम है। तो परिणाम चलते हुए पता ही नहीं चलता कि कितना समय चला गया, तो रस है तो एकाग्रता को ले आता है। चारित्र वो है ना, चारित्र का परिणाम स्थिरता स्थिरता रूप है, तो जहाँ रस आता है वहाँ स्थिरता आती है, चाहे उल्टी हो चाहे सुलटे हो, जहाँ रस आएगा वहाँ एकाग्रता, उसको आर्थ ज्ञान कहते हैं, सुनते हैं धर्म ज्ञान कहते हैं। उस प्रकार से चारित्र मोह के साथ रस का फैक्टर जो है हर परिणाम में अपने परिणाम का रस होता है, तो अनुदय हो अनुदय में शुद्ध परिणाम होता है, शुद्ध परिणाम में शुद्ध परिणाम का रस होता है, और परिणाम की ताकत ये रस के फैक्टर में, परिणाम की शक्ति कहाँ है इस रस के फैक्टर में। तो उदाहरण देकर के मैं बात कर देता हूँ, गुरुदेव के वचनामृत में 19 नंबर का एक नंदी सर्जनालय में 19 नंबर का ये वचनामृत लिया है, श्री गुरुदेव के प्रवचन 144 जाथा समय प्राप्त करते हुए 144 कब चली थी, 1998 यानी आज से लेकर 53 साल हुआ, 53 साल पूर्व से प्रवेश किया, क्योंकि बेंसी ने वो जेल आ गया और समय सार प्रवचन भाग 3 में प्रवचन है। और जिसको समय सार प्रवचन नहीं हो लेकिन आत्मधर्म शताब्दी अंक विशेषांक जो बड़ा निकला है उसमें एक ही प्रवचन है और कोई प्रवचन दूसरा प्रवचन नहीं है, गुरुदेव का एक ही प्रवचन है, वो यही प्रवचन है। इसी में समय सार प्रवचन हमने कुछ लिया है जैसे आपका लिखा हुआ था, क्योंकि बहुत विशेषताएँ इसमें रही है इस प्रवचन, इसलिए वो प्रवचन आत्मसंबंधा विशेष उसमें एक विषय चला है जो यहाँ संक्षिप्त का दूसरा कारण है स्वरूप की पहचान के। प्रथम तो आचार्य महाराज जो अमृत चंद्राचार्य का वचन लिखना है कि प्रथम तो श्रुत ज्ञान द्वारा ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करना, पहचान करना, निश्चय करना मैंने पहचान। उस एक पंक्ति पर गुरुदेव ने प्रवचन बहुत सुंदर किया है, बहुत लंबा चौड़ी बात किया है। अभी तो वो बात कहेंगे अपना वो विषय पत्र में चलेंगे तो वो बात कहेंगे, यहाँ अपन रस की बात के लिए इसका एक उदाहरण यहाँ मिलता है। आगम में आत्मा का सुख का स्वरूप क्या कहा है, वह गुरुगम से बराबर जान करके, देखिए जिसमें गुरुगम दिया ज्ञानी पुरुष से बराबर जान करके, गुरुदेव भी चुपते नहीं है निमित्त को, देखिए उसका अवलंबन करके ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय, यह पात्रता है, यह निर्णय का स्टेज है उत्कृष्ट पात्रता, क्योंकि वह नहीं बता रहा। और आत्मा का अनुभव उसका फल है, ऐसा जो निर्णय है कि सही पात्रता है और उसका फल है वो आत्मा का अनुभव है, ऐसा निर्णय करने की जहाँ रुचि हुई कि दर्शन होता परिणाम वो है आत्मरुचि, वहाँ अंतर में कषाय का रस मंद पड़ जाता है। तो गुरुदेव ने 3 फैक्टर लिया, आत्मकल्याण की रुचि को श्रद्धा के पर्याय है या दर्शन होने के द्वारा, निर्णय को ज्ञान के पर्याय है यथार्थ ज्ञान के पर्याय, क्योंकि ज्ञान के पर्याय में निर्णय होता है पहचान होती है। और वहाँ चारित्र की क्या हालत हुई कि अंतर में कषाय का रस मंद पड़े ही जाए, कषाय का रस मंद पड़े बिना ऐसे निर्णय में किसकी पहुँच होती। तीनों गुण काम करते हैं और तीनों गुण का परिणाम भी आता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। जो सम्यक के काल में 3 गुण के शुद्ध परिणाम हुए मुख्य, बाकी तो अनेक गुण के सिद्ध होते हैं, उस तीनों गुण के मुमुक्षु की भूमिका में क्या परिणाम होता है, जिसको हम एक शब्द में कहेंगे पात्रता। समों के एक शब्द क्या है, पात्रता। तो पात्रता में क्या होता है कि दर्शन हो का अनुभव टूटता है, ज्ञान में यथार्थ समझ आती है, यथार्थता वाली सुविचारणा पूर्वक की समझ होती है और चारित्र में कथा तीनों फैक्टर एक साथ काम करते हैं, परिणमन भी एक साथ हो जाए समय दर्शन के साथ। इस तरह से पूरी लिंक बिठाई है ज्ञान में, हमारा ध्यान जाता है नहीं जाता है अलग बात है, लेकिन बात तो सब दिखाई हुई है, पूरी लिंक है इसकी। ये कार्य कारण बने और कार्य नहीं हुए बने तीन काल में नहीं होता, एक केस भी फेल नहीं होता आप बात करें, एक भी केस ऐसा सॉलिड बात है। तो वो बात रस्म भी पाती और लेकर भी आती है, तो कहते हैं मस्त आता है तो मगरमच्छ के पास आँख से बैठता है, तो मगरमच्छ जो मछली को खाता है तो साथ ही नर्क में मिल जाएगा, शायद पहले भी जा सकता है, सच में जाएगा लेकिन तंदुरिया साथ में नहीं जाएगा, क्या कारण है? नियम के साथ ठीक है, क्या कारण है? हिंसा तो वो करता नहीं है, क्या कारण है? ये कषाय रस का फैक्टर काम करता है, यही कारण है, दूसरा कोई काम। ये कौन सी भूमिका है कि इस लोक से लापता होने की इच्छा होती है और ऐसा भाव आता है कि कोई लौकिक एड्रेस ही न हो, जिससे कोई लौकिक लोग हमारा पता मिला है, किस कारण से है? तो कहीं भावना का कारण क्या है, इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा है, मनुष्य को सत्संग में रहने की भावना, एकांत में रहने की भूमिका मनुष्य की है। क्यों? तो एकांत में रहेगा ये सार्थक है, सार्थक क्या बनेगा क्या सीखेगा पता नहीं, तो हम चलता विषय को छोड़ कर देख सकते हैं, पर चलते विषय में कितने देखते हैं सबको दे दिया ना, सार्थक ध्यान सकता है जो विषय चलता है किसी पर कितने भी प्रश्न करें तो ठीक है, वरना तो पहला संकेत क्या कहते हैं? आप्त पुरुष के वचन की प्रतीति रूप, आज्ञा की अपूर्व रुचि रूप, प्रचंड निरोध रूप से आप्त पुरुष की भक्ति की प्रथम स्थिति कहा है। आप्त माने क्या? आप्त माने जिस पर हम आत्मकल्याण का विश्वास रख सकें, ऐसे पुरुष को आत्मकल्याण आप पुरुष ठीक। हमारे आत्मकल्याण के लिए जिसके पर हम भरोसा करें, विश्वास करें, हमको प्रतीति हो कि इस पुरुष में करने का चिन्हने का निमित्त है, तो आप पुरुष कहते हैं। मुख्य रूप से विधिगत रूप से सर्वज्ञ को आप पुरुष बोला गया है, क्यों? तो वहाँ तो कोई शंका की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वहाँ तो एक अंश मात्र भी अज्ञान नहीं है और एक अंश मात्र भी कोई दोष का कण भी नहीं है, पर परिपूर्ण वितराग है और उनके मुख्य साधक होते हैं सर्वज्ञ सत्य दिग्रंथ गुरु तथा दिगंबर भाव गुरु, वे ये आप पुरुष हैं और जो ज्ञानी होते हैं परमात्मा होते हैं, जिसको पिता भी देव ने परमात्मा कहा, परमात्मा को क्या कहा? परमात्मा को दिया ऐसे ज्ञानी पुरुष चाहे किसी भी देश में से दृष्ट में हो क्या भी आप यानी आत्मकल्याण के लिए विश्वास करने के लिए और उसकी प्रत्यक्षता से प्रत्यक्षता में इस प्रकार के परिणाम होते हैं, उसी परिणाम का विवरण होता है। इसलिए आप फिर इसको छुपा लेंगे और जैसे सजीवन मूर्ति भी कहते हैं, क्यों? कि सजीवन मैंने हमारे सामने जो प्रत्यक्ष किया तो सजीवन मूर्ति को लक्ष्य बना, अगर मुमुक्षु जी जो कुछ भी करता है तो उसके लिए बंधन है, ऐसा कहने का हमारा हृदय है, आता है कौन से पत्र में आता है, है? बस तो बात क्षेत्र ही स्पष्ट है, दुखों में स्पष्ट है। किसको एक सौ अठाणु कोई पण प्रकारे जीव पोतानी कल्पनाए करी सत्ने प्राप्त करी शकतो नथी। एकांत में बैठे बैठे मोक्ष मार्ग के आत्मा के विषय में कल्पना करे विचार करे तो सत आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। सजीवन मूर्ति प्राप्त होते ही, प्राप्त होने पर ही सत प्राप्त होता है, सत समझ में आता है, सत का मार्ग मिलता है और सत पर लक्ष्य आता है। सत मैंने आत्मा, सत स्वरूपी आत्मा। सजीवन मूर्ति के लक्ष्य बिना मैंने ऐसा, मुझे मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो मैं वंचित रह जाऊंगा, ऐसे लक्ष्य बिना जो कुछ भी करने में आता है वो जीव को बंधन है, ऐसा हमारा हृदय है। कितना बदल दे दिया। तो कहते हैं कि ये बात आप्त पुरुष के लिए, आप्त पुरुष के वचन की प्रतीति हुई, इसके वचन की प्रतीति पहचान से आएगी, वरना कहीं न कहीं का मिला इसके वचन की प्रतीति कब आएगी, अगर इसकी पहचान होगी तो इसके समर्थन में 431 नंबर का एक सत्र है। कहते हैं आत्मा जिस पदार्थ को तीर्थंकर ने कहा है वही पदार्थ की उसी स्वरूप में प्रतीति हो जाए, जैसा स्वरूप है वैसी प्रतीति हो जाए और उस परिणाम से आत्मा साक्षात प्रतिभास हो जाए यानी साक्षात्कार हो जाए, इसको भगवान परमार्थ सम्यत्व कहते हैं। वो सच्चा हो गया ऐसा श्री तीर्थंकर का अभिप्राय है। वो बात कही अब आपके पुरुष के लिए ऐसा स्वरूप जिसको भाषित हुआ है, जिसके ज्ञान में इस स्वरूप का भाषमानपणा हो गया है, ऐसे पुरुष में निष्काम श्रद्धा है जिसको, आत्मकल्याण के सिवा कोई कामना नहीं है, ऐसे पुरुष में जिसको निष्काम श्रद्धा है वह पुरुष को, जो निष्काम श्रद्धा वाले पुरुष को बीज रुचि सम्यत्व है, जो पहला संकेत कहा है उसका उल्लेख 431 सत्र में दिया है, उसको बीज रुचि सम्यत्व है। और यहाँ कहेंगे आज्ञा की अपूर्व रुचि, वो भी रुचि है। ऐसा पुरुष की निष्काम भक्ति जिसको अबाधाएं प्राप्त हो, यानी भक्ति में कोई बाधा नहीं हो अपने परिणाम से, ऐसे गुण जिस जीव में होता है उस जीव को हम मार्ग, उस जीव को मार्गानुसारी, मार्गानुसारी कहते हैं, ऐसा दीन कहते हैं। वहां भी भगवान के साथ मार्गानुसारी कर दिया, ऐसा दीन ऐसा कहते हैं मार्गानुसारी का बात किया। मार्गानुसारी किसको कहना, हमारे यहाँ प्रश्न उठता है क्योंकि हमारे यहाँ मार्गानुसारी की चर्चा नहीं करती है। गुरुदेव ने मार्गानुसारी की बात अलग अलग जगह किया है, हमारे यहाँ चर्चा कम है। लेकिन ऐसे ज्ञानी पुरुष की पहचान हो करके इसकी भक्ति में बाधा नहीं हो, ऐसे भक्ति के परिणाम जिसमें हो, ऐसे गुण वाले को यहाँ मार्गानुसारी बनाने के हैं, ऐसा भगवान विनेन्द्र देव है। हम कहते नहीं, वो भगवान कहते हैं। हाँ हाँ वो जो इसमें हो सकता है कि उतना कोई शीतलता हो बाहर में, लेकिन अंदर में कुछ उतना नहीं है। गुण है बाहर में हो सकता है कि संप्रदाय में उसका जन्म हुआ हो ऐसा हो सकता है, लेकिन वो तो अन्य संप्रदाय में रहने वाला तो गुण मार्ग में आ जाएगा। और हम दिगंबर संप्रदाय में है लेकिन हमारे गुण ऐसे नहीं हो तो आप दिगंबर संप्रदाय में पुण्य योग से आए हैं, कहीं और संप्रदाय में फिर चले जाएंगे, तभी तो इस भाव में किसी को क्या लफड़ा चालू हो जाता है।